दुगना दूनी दो कोई हिंदी जानता है अच्छी? कौन? सरदार जी है? तो ये लोग मराठी में बोलेंगे, कुछ पूछेंगे, आप उसका हिंदी अनुवाद करके हमें सुनाइए। है? अरे बोलते तो है नहीं, क्लास में किसी ने हूँ हाँ ना नू क्या?
मामा, भीम का बुद्धि रूपी पेट बड़ा है।
हाँ। पेट दो हैं, एक स्थूल पेट हद का भोजन जिसमें जाता है, और एक है सूक्ष्म बुद्धि रूपी पेट जिसमें बेहद का ज्ञान का भोजन जाता है, याद का भोजन जाता है। तो वो पेट जो हद का है वो तो नीचे है, और बेहद का पेट ऊपर है, तो बुद्ध रूपी पेट कहा जाता है। इस बुद्ध रूपी पेट में सारा ज्ञान समा जाता है, सारी याद की पावर समा जाती है। जैसे स्थूल पेट है उसमें भोजन समा जाता है, जल समा जाता है, परंतु वो भोजन और जल स्थूल है या सूक्ष्म है? कैसा है? स्थूल है। और ये जो बुद्ध रूपी पेट है इसमें सूक्ष्म भोजन, संकल्पों का भोजन, याद का अन्न, दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो है जल और दूसरा है भोजन। भोजन से ताकत मिलती है और जल भोजन को पचाता है। तो ये है ज्ञान जल। ज्ञान जल जो है वो योग रूपी भोजन को पचाता है। तो दो पेट है, समझ में आया?
बाबा, वो वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखा
है,
वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा तो ये कौन था?
रामायण किसने लिखा?
वाल्मीकि
ने रामायण लिखी। वो द्वापर युग था, पहले वाल्मीकि हुए द्वापर में, फिर कलयुग में तुलसीदास हुए। बाबा ने बोला है अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने ग्रंथों में शास्त्रों में लिख दी। तो वाल्मीकि और तुलसीदास ने किसकी कथा कहानी लिखी? राम की। तो इसे साबित होता है कि राम वाली आत्मा ही वाल्मीकि बनी और राम वाली आत्मा ही तुलसीदास बनी। द्वापर में वाल्मीकि बन करके रामायण लिखी और कलयुग में तुलसीदास बन करके रामायण लिखी। और
त्रेता में एक ही भाषा थी, द्वापर में नौ धर्म के धर्म गुरु ने अपनी अपनी भाषा में शिक्षा दी।
द्वापर में नौ धर्म नहीं आ जाते, द्वापर कलयुग दोनों में मिलकर। हाँ, वो अपने
अभी जो
हाँ
इतनी ढेर सारी भाषाएं हैं
दुनिया में
ये कब से और कैसे शुरू हुई?
द्वापर युग से। इस्लाम धर्म आया, उन्होंने अपनी अरबी फारसी चला दी। मुस्लिम धर्म आया, उन्होंने उर्दू चला दी। अंग्रेज आए, उन्होंने अंग्रेजी चला दी। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने पाली और प्राकृत भाषा में सारा लिटरेचर लिख दिया। तो जो जो जैसे जैसे धर्म बदलते गए, जैसे जैसे राजाएं बदलते गए, तो उन राजाओं ने अपनी भाषा चलाई दी। अब उसका यही हिसाब हुआ कि हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं हो गई।
बाबा सतयुग में कौन सी भाषा
थी? देवताएं इशारे में बोलते हैं या जोर जोर से बोलते हैं भाषा में? इशारे की भाषा होती है, बाकी हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी, जो बाप की भाषा वो ही भाषा वहां चलेगी, लेकिन इशारे में चलेगी, ज्यादा बोलने की जरा दरकार नहीं होगी। वाइब्रेशन से ही हम एक दूसरे की भाषा को समझ जाएंगे। दृष्टि से दृष्टि मिली और एक दूसरे की बात को समझ गए। और
बाबा और बीवी साकार तो काजी करना पड़ता है, तो ये काजी का मतलब क्या है?
काजी माने जज, जजमेंट देने वाला। स्त्री जो है, स्त्रियां साकार होती है, साकारी स्टेज वाली या निराकारी स्टेज वाली होती है, है? ज्यादा देह का भान किसे रहता है, पुरुषों को या स्त्रियों को? है ज्यादा देह का भान किसे रहता है? है माताओं को। तो यही बोला कि बीवी है साकारी देह भान वाली और बाप है निराकारी, तो मेल कैसे होगा? तो बीवी को भी क्या बनना पड़े, निराकारी बनना चाहिए ना। बीवी को साथ देना है तो जिसका साथ देना है वैसा ही बनना पड़े। और
बाबा मुनि ने बताया है सतयुग में 8 जन्म 150 साल आयु है, त्रेता युग में 12 जन्म 125 साल आयु
है,
तो 125 साल से 12 जन्म तो 1500 साल होते। 125 साल आयु 12 जन्म,
12 जन्म में 1200 वर्ष ही तो होते हैं। त्रेता में भी कितने वर्ष होते हैं? कितने वर्ष का त्रेता? 1250 वर्ष। तो 125 वर्ष की आयु होने की मतलब ही नहीं, एक एक जन्म में 100 वर्ष ही तो आयु हुई, लेकिन बाबा ने शुरुआत की बात बताई त्रेता की। त्रेता के आदि में एवरेज एज 125 वर्ष होगी, 125 वर्ष, बाकी उसके बाद कम होती जाएगी, अंतिम जन्म में आकर के 100 साल रह जाएगी। और
बाबा परमात्मा पार्ट और पुरुषोत्तम पार्ट में क्या अंतर है?
पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, पुरु माने शरीर, पुरी, शा माने शयन करना, शरीर रूपी पुरी में शयन करना, आराम करने वाली आत्मा, उसे कहते हैं पुरुष। तो शरीर रूपी पुरी में आराम आत्मा करती है कि शिव बाप करता है? आत्मा करती है। तो आत्माओं में जो पुरुषों में उत्तम है वो कोई देवता होगा या भगवान होगा? देवता है, तो वो है पुरुषोत्तम विष्णु नारायण। और
बाबा बताया गया है द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ नहीं?
बिल्कुल नहीं हुआ है।
कृष्ण का जन्म
द्वापर में नहीं हुआ,
सतयुग में हुआ
है। हाँ
बताया है द्वापर में जो ठिकान दिए है, गांव दिए है,
हाँ?
वो आज मौजूद है रुक्मिणी प्रिया कौंडिन्यपुर।
क्या दिए?
आज जो शास्त्र में बताया है
ओहो, शास्त्र द्वापर में लिखे गए या कौन से युग में लिखे गए? द्वापर में जो गांव थे उन्हीं का नाम दे दिया उन्होंने, सच्ची बात करने के लिए। लेकिन बात तो झूठी है ना। कृष्ण 16 कला संपूर्ण या 8 कला संपूर्ण? और द्वापर में कितनी कलाएं होती हैं? शास्त्रों में तो लिखा है सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, द्वापर में 8 कला और कलयुग कलाहीन। तो द्वापर में श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण कहां से आ गया जब वहां 16 कला संपूर्ण देवताएं होते ही नहीं? तो ये सब झूठी बातें हैं। मनुष्यों की बुद्धि विकारी, विकारी बुद्धि से सब कुछ उल्टम पलटम लिख दिया।
कौंडन्यपुर तो
है,
रुक्मिणी ने का मायर बता दिया। कौंडन्यपुर
हाँ
अभी मौजूद है वो, तो मायर ये बता उसकी निशानी भी बताई कहाँ से गई रुक्मिणी, कहाँ से नहीं गई, कृष्ण आके कैसा भगा के लेके गया।
वो तो सारी कथा कहानियां उन्होंने, उन्होंने तो राम का रामेश्वर पुल भी दिखाई दिया है, हिंदुस्तान से लेकर के लंका तक पुल बना हुआ है। जहाँ जहाँ उन्होंने समंदर में ऊंचाई देखी तो कहता है यहाँ पुल था इसलिए ऊंचा ऊंचा है।
कृष्ण के साथ राधा का जैसा नाम लगाया गया वैसा शास्त्रों में रुक्मिणी का भी नाम लगा
के? नहीं, रुक्मिणी तो सदा साथ रहती है कृष्ण के, राधा कहाँ सदा साथ रहती है? राधा तो शादीशुदा थी और रुक्मिणी तो कुंवारी कन्या थी। लेकिन प्यार ज्यादा किसका ज्यादा सच्चा था, रुक्मिणी का प्यार ज्यादा सच्चा था या राधा का प्यार ज्यादा सच्चा था? है नहीं, राधा का सच्चा प्यार था, इसलिए राधा महारानी बनी और रुक्मिणी पटरानी बनी। पटरानी का मतलब ये है अंत में आकर के जब फाइनल परीक्षा माया की होती है तो पट से गिर पड़ती है।
सत्य भामा भी थी ना बाबू?
सत्य माने सच्चा, जिन्होंने सच्चा सच्चा माँ बनकर के ज्ञान दूध पिलाया वो सत्य भामा कौन हुई? कौन सी कन्या है जो गाय हुई है कि उसने बहुत ज्ञान की सेवा की, सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाया तो शिव बाबा ने उसे अपने सर के ऊपर बैठा लिया? कौन है? है? अरे वो कौन है कन्या जो सर के ऊपर बैठी हुई दिखाई जाती है शिव बाबा के? शंकर के सर के ऊपर कोई कन्या बैठी हुई दिखाई जाती है? कौन गंगा? अतवारा वाला सारे भक्ति मार्ग के चित्र भूल गए, धीरे धीरे क्यों बोला? हाँ और
नेपाल में बार बार भूकंप हो रहा है, क्यों हो रहा है?
इसलिए हो रहा है कि वो हद का नेपाल है या बेहद का नेपाल है?
हद का नेपाल
है। हद में जो भक्ति मार्ग आगे जा रहा है हद की दुनिया में, या ज्ञान मार्ग बेहद की दुनिया में तीखा जा रहा है, आगे जा रहा है? अभी ज्ञान मार्ग तीखा जा रहा है दुनिया में भक्ति मार्ग का बोलबाला है या ज्ञान मार्ग का बोलबाला है? भक्ति मार्ग का बोलबाला है। तो जो हद का नेपाल है वहाँ भक्ति मार्ग चल रहा है, और वो भक्ति मार्ग के नेपाल में जो नई दुनिया की पालना करने वाला नेपाल दिखाई दिया है वो तो हद का नेपाल है, और वहाँ भूकंप आ रहा है। तो उन नेपाल वालों की परीक्षा हुई ना, तो वो ये परीक्षा बताती है कि जो सूर्यवंशी हैं नई दुनिया की पालना करने वाले बेहद के, उनकी परीक्षाएं पहले आएंगी या चंद्रवंशियों की, इस्लाम वंशियों, बौद्ध वंशियों की परीक्षाएं पहले आएंगी। समझ में आया कि नेपाल में इतनी जोर जोर से भूकंप क्यों आ रहा है, ये बताने के लिए आ रहा है।
दिल्ली में नॉर्मल आया।
हाँ, दिल्ली में भी नॉर्मल आया। और
श्री राम को दो बच्चे बताए।
हाँ,
वैसे कौन है?
लव माना प्यार करने वाला, प्यार कहो, याद कहो, बात एक ही है। और कुछ माने कुशा, घास कांटे वाली। तो शिव बाबा का बड़ा बच्चा कौन है? शिव का बड़ा बच्चा शंकर। शंकर कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा की कृष्ण वाली आत्मा? राम वाली आत्मा। तो शंकर कहो या राम कहो, बात एक ही है ना। शंकर के कितने बच्चे?
दो
बच्चे। गणेश, कार्तिकेय। गणेश की कभी लड़ाई होती है मम्मा पापा से, माँ बाप से? कभी लड़ाई नहीं होती है, वो लवफुल है। और कार्तिकेय की, वो बार बार गुस्सा होके चला जाता है, तो वो है माता को दुख देने वाला। बच्चा घर छोड़ करके कहीं बाहर चला जाए तो माँ बाप को दुख होगा या सुख होगा? है, माँ बाप को दुख होता है। ऐसे ही राम को दो बच्चे दिखाए गए, एक लव है और एक कुश। तो द्वापर युग में दो धर्म आते हैं, एक इस्लाम धर्म। द्वापर में तो देह का प्यार होता है ना, तो देह के प्यार करने वालों में बहुत तीखा जाने वाला इस्लाम धर्म, उसका हेड, उसका नाम हुआ लव। और कुश, कुश माने कुशा घास, जो संसार को बहुत दुख देता है एटम बम बना करके, कौन है, कौन सा धर्म है? कौन से धर्म वाले एटम बम बनाते हैं? क्रिश्चियन धर्म। वो यो है लव, वो कुश काटे हैं दुनिया के लिए, दुखदाई है। और
बाबा,
ओ
संगम युगी लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कब शुरू हुई?
संगम युगी लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कब हुई,
कब शुरू होगी,
कब शुरू होगी? जो लक्ष्मी, संगम युगी लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? पहले जन्म होगा कि पहले उनकी डायनेस्टी शुरू होगी? हम जो पूछते हैं वो बात बताओ, लक्ष्मी नारायण का पहले जन्म होगा या पहले उनकी राजाई शुरू होगी? तो बाबा ने तो बोल दिया था मुरली में, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, 66 की वाणी है। तो 66 की वाणी के हिसाब से 76 आता है लक्ष्मी नारायण का जन्म। लक्ष्मी नारायण का जन्म कहो, राम सीता का जन्म कहो, बात एक ही है। तो वो दोनों आत्माएं वहां जन्म हुआ न कि उनको राजा ही मिल गई है, जन्म हुआ। सीढ़ी में तो दिखाया है, बैगर टू प्रिंस बनता है। सीढ़ी में कोई बैगर दिखाया है नीचे? बैगर के रूप में चारपाई पर पड़ा हुआ है, सर के नीचे गीता है, गीता का ज्ञान है, और विदेशियों से भीख मांग रहा है। तो वो जन्म होने की बात, समय की बात है कि राजाई की बात है? जो भीख मांग रहा है वो जन्म होने के बाद भीख मांग रहा है कि राजाई मिल गई? जन्म होने के बाद की बात है, बैगर पने की बात है। बैगर टू प्रिंस बनता है। और दुनिया वाली जो सरकार है उनकी 5 ईयर प्लान चलती है, उनकी 5 ईयर प्लान चलती रहती, एक के बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। कितने सालों से 5 ईयर प्लान चल रहा है? स्वराज्य मिला है कि और ही परतंत्रता आ गई? दुख बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। नई दिल्ली बनी कि पुरानी दिल्ली बन गई है? दिल्ली तो और ही पुरानी बनती जा रही है। भाव, स्वभाव, संस्कार सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो यू बैगर है, राम वाली आत्मा कहो, नारायण वाली आत्मा कहो, वो बैगर टू फुल प्रिंस बनती है 5 वर्षों में। क्या 77 है संपूर्णता वर्ष, संपूर्ण जन्म हुआ, प्रत्यक्षता रूपी संपूर्ण जन्म हो गया राम वाली आत्मा का। तो 77 के बाद 78, 79, 80, 81, 82 में वो आत्मा फुल प्रिंस बन जाती है। उससे किसी के दरवाजे पर जाकर के भीख मांगने की दरकार नहीं। तो बैगर टू फुल प्रिंस बनने का 5 ईयर प्लान शिव बाबा का एक ही बार बनता है। वो भ्रष्टाचारी संस्कार सरकार का प्लान बार बार बनता रहता है और 5 ईयर प्लान पूरा होता ही नहीं। तो वो हुई जन्म की बात, जन्म के समय की बात, बचपने की बात। अब राजाई बड़े होके मिलेगी या बचपने में मिलेगी? तो 25 वर्ष में 15-16 वर्ष जोड़ दो, 17 वर्ष। कितना आया? 25 वर्ष में 15 वर्ष और जोड़ दो, 40 साल आया। ये 40 साल पूरे हो रहे हैं कि नहीं? अभी तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो राम वाली आत्मा तुम बच्चों में अव्वल नंबर है या नहीं? तो वो अव्वल नंबर बड़ी हो जाती है 40 साल पूरे होने पर। 40 साल पूरा हुआ माने लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाता है संगम युग में। संबत एक एक शुरू हो जाएगा, नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो जाएगी। राजधानी छोटी होगी कि बड़ी होगी? पहले छोटी राजधानी होगी कि बड़ी होगी? छोटी होगी। 8 निकलते हैं जो संगठित हो जाते हैं, फिर उनमें धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। 8 में 100 और ऐड हो जाएंगे, 108 बन जाएंगे। फिर ब्रह्मा की 1000 भुजाएं ऐड हो जाएंगी, 1008 बन जाएंगे। फिर 16,000 गोप गोपियां गाई हुई हैं, वो ऐड हो जाएंगी, 16,108 हो जाएंगे। फिर लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, ऐसे पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। तो लक्ष्मी नारायण की राजाई कब शुरू होगी? बुद्धि में आया है? लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कब शुरू होगी? तुम्हारा यही तो प्रश्न था। तो कब? हाँ, 2018 में लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो जाएगी, बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। प्रत्यक्ष हुआ बाप, 1 सेकंड में विश्व की बात सही दे देगा। और
शिवाजी महाराज
बाबा ने कहा, बाप आत्माओं का पार्ट थोड़े ही बतावेंगे कि कौन सी आत्मा का क्या पार्ट है। न कागज पर लिखकर बतावेंगे, न बोर्ड पर लिखकर बतावेंगे। जिस आत्मा का जो पार्ट होगा वो अपने आप अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगा, अपनी चलन से प्रत्यक्ष करेगा, अपनी दृष्टि वृत्ति से प्रत्यक्ष करेगा। क्या उस तरह का पार्ट कोई दूसरी आत्मा प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकती? तो पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा, पूछने की दरकार ही नहीं कि किसका पार्ट है।
बाबा बेसिक में चित्र बताया है, बेसिक में चित्र बताया है पुष्प विमान, तो पुष्प विमान बताया है बेसिक में, बेसिक में सतयुग में पुष्प विमान होगी,
पुष्प का
विमान
हाँ, वो सतयुग में समझते हैं कृष्ण के जन्म के बाद, लेकिन सच्चा सतयुग संगम युग से शुरू होता है या कृष्ण के जन्म के बाद शुरू होता है?
संगम युग।
तो संगम युग में पुष्प माने फूल, का माने करने वाले, फूल बनाने वाले, क्या कांटा बनाने वाले नहीं, कैसे कैसे विमान फूल बनाने वाले, माना फूल जैसी हल्की अवस्था जो बना दे ज्ञान सुना करके, वो ही पुष्प विमान हो गया। ऐसे पुष्प विमान घर में नहीं बैठे रहेंगे, उड़ेंगे और उड़ के चारों तरफ ज्ञान की झंझनाहट करके और फूल तैयार कर देंगे, फूल बनाए देंगे, फूल करेंगे, क्या करेंगे, फूल करेंगे। कांटे नहीं पैदा करेंगे, फूल पैदा करेंगे। तो जो फूल पैदा करते हैं उनका नाम रख दिया है पुष्प का, क्या का, पुष्प का। वाह भाई, ये तो खूब बढ़िया हिंदी बोलता है। हाँ हूँ तो करता है। और
बाबा सूक्ष्म शरीर सफेद और रंगीत ऐसे दो हो सकते हैं?
हाँ, सात रंग है।
हाँ, सात
सप्तरंग है, तो सप्तरंग में सात धर्म आ जाते हैं। क्या, जो सफेद रंग है वो सतयुग का है, सूर्यवंश, तो सूर्यवंशी अलग कर दो तो सात रंग रह गए। तो जो सात रंग हैं, क्या पूछा,
सूक्ष्म शरीर सफेद और
हाँ, सूक्ष्म शरीर सात धर्म वालों का बनता है, क्या सात धर्म वाले हैं जो सूक्ष्म शरीर लेते हैं, क्योंकि पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं, और धर्म वाले पूरा श्रीमत पर न चलने के कारण पाप ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे, ज्यादा पाप करते हैं, ज्यादा पाप करते हैं तो उनको भूत प्रेत का शरीर मिलता है। और धर्म वाले ऐसे करते हैं, जो सूर्यवंशी होंगे वो ज्ञान सूर्य की मत पर चलेंगे तो पाप ज्यादा बनेंगे या पुण्य ज्यादा बनेंगे, पुण्य ज्यादा बनते हैं, इसलिए वो भूत प्रेत बनते ही नहीं, वो हैं देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। और
लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था, उर्मिला का अर्थ क्या,
उर माने गला, मिला माने मिला, क्या उर्मिला जो है वो लक्ष्मण से मिली हुई थी, किससे मिली हुई थी, लक्ष्मण से मिली हुई थी, लक्ष्मण जैसे कहता था वैसे ही करती थी, लक्ष्मण ने कहा घर में रहो तो घर में रही, जंगल में नहीं गई। और
ब्रह्म शरीर छोड़ने के बाद में राम वाली आत्मा में प्रवेश करके एडवांस प्रे करते हैं, तो उसका प्रूफ क्या है बाबा?
मुरली में तो आया है यज्ञ के आदि में जो बच्चे थे मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनमें से कोई मरे होंगे तो कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे, 65 की बात है, 65 की मुरली है, तो सन 65 में से 20-25 वर्ष घटाओ कितना आया, 42 और 47 आया, तो तो 42 में जिनका जन्म हुआ वो राम की आत्मा, और 47 में जिनका जन्म हुआ जब पाकिस्तान बना, तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। माना सीता वाली जो आत्मा है, जब पाकिस्तान बनता है तो उसका जन्म होता है, शरीर छोड़ देती है वहां यज्ञ में, तो साबित हो गया ना। जो राम सीता वाली आत्माएं होंगी उनकी एज क्या होगी, उनकी जन्म तिथि क्या होगी, 42 से 47 के बीच होगी, 20-25 वर्ष के हुए होंगे, तो एज मिल गया। फिर बोला अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। क्या? अहमदाबाद सर्व सेंटर्स का बीज रूप है। अरे भारतवर्ष में इतने सेंटर्स खुल चुके थे, वो बीज रूप सेंटर नहीं, और अहमदाबाद बाद में खुला है तो वो बीज रूप हो गया। बीज पहले होता है या बाद में होता है? बीज पहले होता है। तो ये क्या बात हुई, दुनिया में चारों ओर सेंटर खुल गए, वो बीज रूप नहीं हुए, और अहमदाबाद बीज क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि जो दुनिया की बीज रूप आत्माएं हैं, शंकर पार्वती जिन्हें कहो, राम और सीता जिन्हें कहो, दुनिया के जो बड़े से बड़े बीज हैं, सबके बाप हैं, बीज माने बाप, तो पालड़ी सेंटर में जाकर के जन्म लेते हैं। अहमदाबाद का जो पहला सेंटर खुलता है ना, वो बीज रूप आत्माओं ने वहां जन्म लिया, इसलिए बताया अहमदाबाद है सब सेंटर्स का बीज रूप। तो ढूंढो, चिट्ठी लिख के दीदी दादियों से पूछो, वो भी बीज रूप आत्माएं कौन सी हैं? जो पालड़ी सेंटर से निकली, फिर बोला फरुखाबाद वाले लोग मालिक को बौद्ध मानते हैं। अब विश्व का मालिक, घर का मालिक तो एक ही होगा या दो होंगे या चार होंगे, एक ही होगा, तो फरुखाबाद का नाम बार बार क्यों लिया 7-8 मुरलियों में? क्या और जिले नहीं है? इसका मतलब है जो विश्व का मालिक बनने वाली राम वाली आत्मा है, वो कहां से प्रत्यक्ष होती है, कहां जन्म लेती है? फरुखाबाद में। सारी बातें मिक्स करो और मिला के देखो तो राम वाली आत्मा कब आई ज्ञान में, ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद आई या शरीर छोड़ने से पहले आई? हैं? बाद में आई, क्योंकि जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला एक ही शेर रहेगा या 2-4 शेर रहेंगे? तो पहले ब्रह्मा बाबा था 68 तक, 68 के बाद ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो 69-69 में दूसरा शेर आ गया। जिसकी ज्ञान की दहाड़ का जवाब किसी के पास नहीं,
प्रत्यक्ष
होता
तो बाबा
प्रत्यक्ष
हो गया, कैसा होगा?
कैसा माने प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है?
हाँ।
राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई, उसका कैसा हुआ? राम वाली आत्मा का कैसा हुआ? 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, कैसा हुआ? अरे राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? हुई ना। ऐसे ही शिव बाप जो है किस मुकर्रर रथ में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जो पहचान बता दी बाबा ने, जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाप आ गया, जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी सुने तो कहेगा ये मेरा बाप आ गया, जिसने ये दो बातें सुनाई, तो निशानी नहीं हो गई? ओम शांति। हाँ आगे आ जाओ।
नेपाल में भूकंप हो गया।
अरे हर जगह वही एक बात, नेपाल में भूकंप हो गया, क्योंकि वो तो नेपाल है ना। हाँ हद का नेपाल है, हद का है या बेहद का है? हद का नेपाल है। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा नेपाल है? ये भी तो दुनिया है, यहाँ कौन सा नेपाल है? हद का है या बेहद का है? बेहद का नेपाल है। बेहद का नेपाल माने बेहद की जो नई दुनिया बनने वाली है उसकी पालना करने वाले। तो जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं उनकी पहले परीक्षा होगी या जो द्वापर युग में या कलयुग में दुनिया की पालना करने वाले हैं और धर्म वाले उनकी पहले परीक्षा होगी? है नई दुनिया की पालना करने वाले तो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी तो अव्वल नंबर, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। अल्लाह ने कौन सा धर्म स्थापन किया? अव्वल नंबर दीन स्थापन किया। तो जो अव्वल नंबर है उसकी परीक्षा अव्वल नंबर में होगी या बाद में होगी? अव्वल नंबर में होगी। तो हद का नेपाल ये बात बता रहा है हमको पहले से, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है दुनिया में? भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। तो भक्ति मार्ग की बात बताई कि नेपाल में देखो जलजला आया, भूकंप हो गया, ऐसे ही जब ज्ञान मार्ग आगे जाता है तो ज्ञान मार्ग में जो अव्वल नंबर दीन है, अव्वल नंबर धर्म है, उस धर्म में आने वालों की परीक्षा सबसे पहले होगी। घबराना नहीं है। और
जब माउंट पराम में हम लोग जम जाते हैं तब हम कितने साल कोमा में रहते हैं बाबा?
कोमा में?
कोमा
में क्यों रहेंगे? है और कोमा में रहने का मतलब है बीज रूप स्टेज में टिक जाना। और जो बीज रूप स्टेज में टिक जाएंगे वो तो परमधामवासी हो जाएंगे। तो परमधाम में कोई कितने टाइम रहेंगे, कोई कितने टाइम रहेंगे, सबका एक जैसा टाइम थोड़ा ही होगा। जो बताया जाए कि हम परमधाम में कितने टाइम टिके रहेंगे अर्थात कोमा में कितना टाइम रहेंगे वो तो अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार है। और
भगवत गीता के जो श्लोक है उसे तो ये साबित होता है कि भगवान बाप मेरा का है। दीदी दादी जितनी बड़ी है वो क्यों कृष्ण को मानती है? वो कृष्ण को भगवान बाप क्यों मानती है?
कृष्ण को भगवान क्यों मानती है? उनका कहना है कृष्ण वाली आत्मा में ही निराकार भगवान प्रवेश करता है और कोई भी प्रवेश नहीं करता, इसलिए मानती है। और कोई में अगर प्रवेश करने लगेगा तो उनका प्रभाव तो खत्म हो जाएगा दुनिया में। तो अपने प्रभाव को कोई गिराना चाहेगा क्या है? हर आदमी अपना झंडा ऊंचा रखना चाहता है या दूसरे का झंडा ऊंचा कर देगा है? हाँ। और हाँ, क्या अर्थ हुआ? अरे अर्थ बताएंगे तभी तो प्रश्न पूछेंगे। परकाया प्रवेश करने पर परकाया प्रवेश कर दिया तो अपनी इंद्रियां कहाँ रही? वो तो पर की इंद्रियां हो जाती हैं। ये तो बात गलत है कि अपनी इंद्रियों का अनुभव होता है। हाँ, इंद्रियां सूक्ष्म में भी होती हैं। 10 इंद्रियां हैं वो सूक्ष्म में भी हैं। स्थूल इंद्रियां जो छूट गई, इंद्रियाणि परान्या हो, उन प्रबल इंद्रियों के आधार पर जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो जिसमें प्रवेश करता है उनको अधीन कर लेती है। परंतु आपका पूछना क्या है? है अरे वो तो ठीक है, श्लोक तो ठीक है, आपका पूछना क्या है? वो तो बता दिया, इंद्रियों को अधीन करते हैं, माना आत्मा कमजोर है, प्रबल आत्मा ने प्रवेश कर लिया तो उसकी प्रबल इंद्रियां भी उसको कंट्रोल कर लेती है।
आत्मा सदैव त्रिगुणाती है,
त्रिगुणातीत है, तीन गुणों से अतीत है सदैव।
शरीर तीन गुणों में बंधा है,
तीन गुणों से अतीत है सिर्फ सुप्रीम सोल है। आत्मा नहीं त्रिगुणातीत है, सत्य रज तम ये तीन गुण इस संसार में लगे ही रहते हैं पीछे। हाँ, एक शिव बाप है, इस सृष्टि पर आता है तो तीनों गुणों को कंट्रोल करके आता है। वो तमोगुण से कभी भी प्रभावित नहीं होता, रजोगुण से कभी भी प्रभावित नहीं होता। अगर प्रभावित हो जाए तो उसको भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। हाँ,
जब युद्ध करने जाता है,
हाँ,
तब उसके रथ पर झंडा दिखाते।
क्या दिखाते?
झंडा,
झंडा, हाँ,
उसके झंडे के चित्र में हनुमान का चित्र दिखाते।
हाँ, अर्जुन है कौन वास्तव में? ब्राह्मणों की दुनिया में अर्जुन कौन है? अव्वल नंबर, जो अव्वल नंबर वोटे सो अर्जुन। तो वो अर्जुन कौन है? हैं? राम वाली आत्मा, और राम वाली आत्मा में कौन कौन प्रवेश है? हैं? शिव बाप प्रवेश है रथ को कंट्रोल करने के लिए, और उस रथ के ऊपर मस्तक के ऊपर कौन बैठा है? हैं? चंद्रमा। चंद्रमा कौन सी आत्मा है? हनुमान। तो ठीक तो है, गलत थोड़ा ही दिखाया है। और सतयुग के लक्ष्मी नारायण को ही राज्य क्यों दिया गया? क्योंकि यज्ञ के आदि में जो पवित्रता वाली बात थी उस पर विजय राम वाली आत्मा ने पाई या कृष्ण वाली आत्मा ने पाई? हैं? आगे कौन गया? कृष्ण वाली आत्मा आगे गई तो राम वाली आत्मा हार गई। अभी तो बताया मुरली में, अंत मते सुगते हो जाती है, जहां जन्म वहां जीत। तो कृष्ण वाली आत्मा का सतयुग में जन्म होना था तो कोई के ऊपर जीत पाई होगी ना, तब तो उनसे जन्म लिया। और सारा वजन किसको ढोना पड़ा स्वर्ग स्थापन करने का? है माँ बाप वाली आत्मा को। माँ बाप सारा जीवन धन अर्जन करते हैं और बच्चों को अर्पण कर देते हैं, तो जीत पाई ना बच्चे ने, तभी तो की कमाई मिल गई, करना कुछ भी नहीं पड़ा। और
बाबा जब परमधाम में आत्मा आत्मा और बिंदी बिंदी एक हो जाते ना, फिर बाप को कैसे?
एक थोड़े ही हो जाते हैं, सब आत्माएं अलग अलग रहती हैं, सबकी कुर्सी अपनी अपनी अलग अलग है। आत्मा परमात्मा में मिल थोड़े ही जाती है।
फिर बाप को कैसे पहचानेंगे बाबा?
वहाँ परमधाम में पहचानने की बात ही नहीं, ये तो यहाँ परमधाम से जब बाप आते हैं इस सृष्टि पर, तब साकार सृष्टि में पहचानने की बात है। बिंदी बिंदी को क्या पहचानेगी? बिंदी बिंदी सब एक जैसी। और
सतयुग के अंदर जो लक्ष्मी नारायण है,
हैं,
सबसे श्रेष्ठ पद है राजा का,
हैं,
तो आठवां नारायण इतना गरीब कैसा बन गया आखिर?
जो भी राजाएं बाद में उतरते जाते हैं वो उनकी ताकत कम होती जाती है कि बढ़ती जाती है? हैं?
कम
ही होती जाती है। तो आठवां नारायण है वो सबसे कम ताकत वाला है, क्योंकि आर्य समाज से कनेक्टेड है। जितने भी धर्म हैं आस्तिक भगवान को मानने वाले, उनमें सबसे कमजोर धर्म और राज्य किसका चलता है? आर्य समाजियों का। तो आर्य समाज वाली जो आत्मा है वो आधार मूर्त बनती है महर्षि दयानंद का। महर्षि दयानंद परम धाम से आते हैं और उस आर्य समाज में कन्वर्ट होने वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं। उसका कम पुरुषार्थ है। ऊपर के सात नारायण उसके मुकाबले जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए उनके धर्मों में भी ज्यादा ताकत है और उनके राज्यों में भी ज्यादा ताकत है। और
तत्व माने क्या? तत्व का विश्लेषण क्या? तत्व माने क्या? तत्व का विश्लेषण क्या?
सत्व माने पवित्रता।
तत्व
सा
तत्व
सत्व
तत्व
सत्व तत्व तत्व माने सार। तत्व माने सार, जो वृक्ष है उसका तत्व क्या हुआ, बीज, बीज माने सार।
बाबा, नौ धर्म के जो श्रेष्ठ 12-12 आत्माएं इनकी रुद्र माला बनती है, ये रुद्र माला 108 बनती की है कि हर धर्म के लोग फेरते
हैं,
हर धर्म
हर धर्म में माला घुमाई जाती है।
कोई ऐसा धर्म है जो कि नहीं माला करते?
माला सभी धर्मों में मानते हैं, माला माने संगठन। हाँ, कोई धर्म की माला कम मणकों की होती है और कोई की 108 पूरे मणकों की है। और है
जो धर्म है,
हाँ,
कैसे मदद करते हैं,
माला कैसे स्मरण करते हैं?
सौ मणके की माला को जपते
हैं। हाँ, वो अष्ट देवों को जो सूर्यवंशी हैं उनको नहीं मानते। हाँ जी, वो तो देवताएं हैं पक्के। जो कच्चे देवताएं बनते हैं वो ही नारायण बनते हैं, कम कला वाले। और वो ही नारायण और धर्मों के आधार मूर्त बनते हैं, तो वो उनको मानेंगे या उनको मानेंगे? और
देवता होते हुए भी वृंदा की पवित्रता को खंडित कैसे करते हैं?
कैसे करते हैं?
इसका राज क्या है?
हैं?
इसका राज क्या है?
जो वृंदा है वो पार्ट किसका है? हैं? पार्ट किसका है? हैं? तुलसी किसका पार्ट है? हैं? जगदम्बा का पार्ट है। और जगदम्बा पहले जगत पिता की है या राक्षस की है? हैं? जगत पिता की है। तो जो विष्णु तो जानते हैं ना जन्म जन्मांतर का राज।
हाँ।
दादा लेखराज जगदम्बा बनते नहीं है, जगदम्बा के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए माँ काली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। और
संबंध केवल इंद्रियों द्वारा रखा जाता है, संबंध
संबंध
केवल इंद्रियों द्वारा रखा जाता है।
हाँ।
निराकार के अंदर जो हमारे आत्मा बिंदी बिंदी भाई भाई है।
हाँ, भाई भाई नहीं है, निराकार शिव हमारा भाई नहीं है, वो हमारा बाप है सिर्फ।
बाप का बच्चे का संबंध है
क्योंकि वो हमको नॉलेज देत करके हमको हमारी पहचान देता है, हमको जन्म देता है आत्मा का। पहले हम आत्मा थे ये जानते थे? नहीं जानते। उसने आकर के हमको जन्म दिया। बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम आंख नहीं हो, कान नहीं हो, शरीर नहीं हो, क्या हो तुम? तो आत्मा ज्योति बिंदु। जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा, सांप का बच्चा सांप जैसा लंबा, ऐसे ही मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा और मेरे बच्चे भी ज्योति बिंदु आत्मा। तो वो बाप का संबंध है, उसके साथ कोई दूसरे इंद्रियों के संबंध नहीं बन सकते। हाँ, जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो सब प्रकार के संबंध बनते हैं इंद्रियों के द्वारा। पार्वती शिव का भी संबंध बनता है, पति पत्नी का। शरीर में प्रवेश किया तब पति पत्नी का संबंध बना या ऐसे ही बना? हैं? अव्वल नंबर का गायन होता है, बाकी तो बोला है मुरली में तुम सब पार्वतियां हो, एक पार्वती की बात नहीं है, तुम सब पार्वतियां जो हो वो पार लगाने वाली हो। किसको? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, जो नाम पड़ता है, तो नाम शरीर का पड़ता है या आत्मा का पड़ता है? शरीर का नाम पड़ता है, तो वो सबसे जास्ती पतित है इस दुनिया में या पावन है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं? हैं? सबसे जास्ती पतित है, तो तुम उस पतित को पार लगाने वाली हो। इस विषय सागर कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, इसमें सांप पड़े हुए हैं, उनमें सबसे जास्ती गोते खाने वाला कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा। तो तुम सब पार्वतियां हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। और
ब्रह्मा विष्णु और महेश 5000 साल के ड्रामा में जब आते हैं तो स्थूल और शरीरधारी होते हैं क्या, सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं? पार्ट टू का कहते
शिव बाबा कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। और मूर्ति साकार को कहा जाता है या निराकार को कहा जाता है? एक है अमूर्त, जिसकी मूर्ति नहीं, बिंदु। शिव है अमूर्त, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो अमूर्त है। लेकिन वो इस सृष्टि पर जब आता है, साकार सृष्टि पर, साकार शरीर में, तो अकेला नहीं है, 3 मूर्तियां भी उसके साथ। यज्ञ के आदि में भी 3 मूर्तियां, और जब अंत में प्रत्यक्षता होगी बाप की, अभी तो गुप्त पार्ट है, ज्ञान गर्भ के अंदर का पार्ट है, जब प्रत्यक्ष होगा तो भी 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी। जगदम्बा के रूप में ब्रह्मा भी होगा, वैष्णवी देवी भी होगी, और शंकर का भी पार्ट होगा। तो 3 मूर्तियां हैं जो शरीर का भान छोड़ती है तो फरिश्ता बन जाती है, श्री सूक्ष्म शरीरधारी कहे जाते हैं। और
अष्टदेव का दूसरा मंत्र वही है
ना, दूसरा मणका नहीं है, है? है? युगल मणका नहीं है, युगल मणका पहला है। लक्ष्मी और नारायण दोनों कंबाइंड होने से विष्णु रूप बनता है, तो युगल मणका पहला है या दो है? एक ही हुआ। भूत प्रेत नहीं होती है, कोई देवी ये भी थोड़ा ही होती है। कलयुग में लोग डर जाते हैं तो देवी कह के पूजने लगते हैं, बह का भूत चढ़ बैठता है। नहीं तो कोई देवी देवता को ला करके हमारे अंदर प्रवेश करा दो।
हाँ। बड़ी माँ काली माता का रूप क्यों धारण करती है?
इसलिए धारण करती है कि बड़ी माँ जो है वो बड़े बाप की संगिनी है। बड़ा बाप है तो बड़ी माँ भी है ना, तो दोनों जगत पिता और जगत माता का संबंध है। जगत माता का धर्म है जगत पिता का सहयोग करना। जगत पिता शंकर के रूप में पाठ बजाता है, तो शंकर का काम है असुरों का आसुरी सृष्टि का विनाश करना, तो उस काम में सहयोग नहीं देगी? देगी, हाँ देगी। तो महाकाली का रूप धारण करके और असुरों का संहार करती है। काम करने का काम माता करती है, कहती है तुम बैठे रहो आराम से भगवान की याद में, मैं सारा काम कर दूंगी।
बाबा आप तो एक मुनि में कहा है क्योंकि वो काले काम करती है।
हाँ, बिना काले काम के बिना अपवित्रता के क्या विनाश होगा? विनाश अपवित्रता से होता है या पवित्रता से होता है? हैं? अपवित्रता से विनाश होता है और पवित्रता से स्थापना होती है। तो लक्ष्मी है पवित्र, पवित्र लक्ष्मी सहयोग करती है। वो राइटियस भुजा है और वो लेफ्टिस्ट भुजा है, दोनों ही सहयोगिनी है। प्रकृति भी प्रकृतिपति की है और लक्ष्मी भी नारायण की है, इसलिए दोनों सहयोगी हैं। एक राइटियस रूप में सहयोगी है और दूसरी लेफ्टिस्ट रूप में सहयोगी है। हाँ जी,
बक्की मारने किससे आशीर्वाद लेते हैं? आशीर्वाद
हाँ
लेते हैं, देते हैं
हाँ।
उसका दर्शन कर लिए बाद उसके सिर माथे पर रखते हैं।
किसने?
हाथ उसके सिर पर रखते हैं।
हाँ, भक्ति मार्ग में हाथ ऊपर रखते हैं। ये हाथ बुद्ध रूपी हाथ है, ये सर जो है वो भी बुद्ध रूपी सर है, पेट है। तो ये हाथ जो है उस पेट के ऊपर रख देते हैं, तुम्हारा पेट भरा पूरा रहे, तुम भूखे न रहो। हाँ,
हमने लक्ष्य दिया है नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना, और दोनों के बीच में तृतीय पंक्ति लोग रहते हैं, उसके कारण बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है?
दोनों के बीच में क्या होता है?
तृतीय पंथी लोग रहते हैं,
तृतीय पंथी
है,
तृतीय पंथी,
तृतीय पंथी,
थर्ड मैन न्यू पुरुष और स्त्री,
पुरुष के बीच का रहते वो, स्त्री भी नहीं रहती,
उनके बीच का
हिजड़े ब्रह्म नला, उनके
बारे में क्या लक्ष्य?
उनके बारे में
क्या लक्ष्य दिया?
क्या लक्ष्य दिया? ये जो नर नहीं है नारी भी नहीं है, वो तो एक जानवरों की कोटि है, वो मनुष्य नहीं है।
मनुष्य कैसे तो कर्तव्य कर्तव्य करते हैं?
वो देवता भी नहीं है, वो राक्षस भी नहीं है, उनकी जाति ही अलग हो गई। भगवान ने हमें लक्ष्य नर से नारायण बनने का दिया है, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है, ब्रह्मनला बनने का लक्ष्य नहीं दिया है। भले अर्जुन एक साल के लिए ब्रह्मनला बनता है क्योंकि उसको शाप मिलता है, और बाप ने ये मुरली में बोला है कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। किसके ऊपर? अब्बल लंबर अर्जुन के ऊपर लागू न होती हो। तो दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का बीज किसके अंदर है? एक ही बीज है सारी सृष्टि का, 84 लाख योनियों का भी वो पार्ट बजाता है। इसलिए बोल दिया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, बाकी कोई ऐसे थोड़े ही है कि वो जानवर शरीर धारण कर लेता है। नहीं, जानवर जैसे पार्ट बजा सकता है। हाँ जी, आधार मूर्त आत्माओं को
अष्टदेव की आत्मा
अष्टदेव की आत्माएं जन्म देगी
और राजाई भी देगी।
राजाई भी देंगी,
ओम राधे सरस्वती की को जन्म देने वाला और राजाई देने वाला अष्टदेव का दूसरा मणका है।
दूसरा मणका है, पहला मणका नहीं है
वो, लक्ष्मी आया योगिनी
पहले, पहला मणका नहीं है। अरे पहला और दूसरा मणका जो है वो युगल मणका एक है या अलग अलग है? दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो गए या अलग अलग संस्कार हैं? तो आप दोनों को अलग क्यों कर दिया? एक ही संगमयुगी लक्ष्मी नारायण से सतयुगी लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, राधा कृष्ण का। नहीं, योगिनी माँ अलग और लक्ष्मी जो है वो विजयमाला से आती है। रुद्रमाला का दूसरा मणका है योगिनी और जो लक्ष्मी है वो विजयमाला का पहला मणका है।
कर्म के कवच और कुंडल यानी देह में क्या है?
गुण है, गुण रत्न है, कवच है योग। कानों में जो कुंडल पड़े हुए हैं वो है अच्छी बात सुनना है, अच्छी बातों को धारण करना है। और
शरीर को कोई चोट लगती है या
हाँ।
दुख होता है
हाँ।
ज्यादा
हाँ।
तब आत्मा उसे शरीर को छोड़ जाती है। सुख में क्यों नहीं छोड़ती
है?
सुख में क्यों नहीं छोड़ती
हाँ। अंतमते सुगते, नहीं सुना तो आपकी बात झूठ है या सच है? अगर अंत में मति अच्छी है तो सुख है या दुख है? अरे
हो जाता है
वो तो दुनिया की बात आपने बताई, लेकिन हमेशा की बात नहीं है। सतयुग त्रेता में क्या दुख में शरीर छोड़ते हैं? नहीं, वहां तो सुख में ही शरीर छोड़ते हैं ना। ये यहाँ की इस दुनिया की बातें हैं। और
अभी ये 2 वर्ष के अंदर हाहाकार हो जाएगा
है हाँ।
अभी ये 2 वर्ष के अंदर हाहाकार हो जाएगा,
ठीक है,
हाय हाय करते रहेंगे
हाँ हाँ।
पॉइंट है 2 दिसंबर 84
की रिवाइज वाणी है वास्तव में 73 की, 73 की वाणी है। तो 73 में ये घोषणा कर दी कि 2 वर्ष के बाद 74 और 75 के बाद जो 76 आने वाला है उसमें ब्रह्मा कुमारियों में हाहाकार हो जाएगा, क्योंकि एडवांस पार्टी निकल पड़ती है, वो सारा ज्ञान ब्रह्मा कुमारियों का उल्टा कर देती है। नहीं समझ में आया? हाँ जी
बाबा, अब हैदराबाद में क्लास करने को क्यों नहीं आते बाबा?
हैदराबाद में
क्लास करने को क्यों नहीं आते?
क्योंकि वहाँ जो भस्मासुर हैं वो 4 व्हीलर लेकर के बाबा के पीछे पड़ते हैं, और शास्त्रों में दिखाया है कि भस्मासुर से बचने के लिए शंकर जी भागे भागे फिरते थे, और हम भी शंकर जी की औलाद हैं, इसलिए हम उनका मुकाबला न करके मारपीट होने लगेगी, झगड़ा हो जाएगा, उससे युक्ति से काम निकालना अच्छा है। और
नेपाल में भूकंप हो रहा है तो उसका बेर में आरोप क्या है?
अभी क्या सोई हुई थी?
गणेश में परीक्षा हो रही है तो वो परीक्षा हो रही है तो क्या वो हिलने की स्थिति हो रही है क्या? परीक्षा गणेश में परीक्षा हो रही है क्या वो हिलने की शूटिंग हो रही है?
कोई हिलने की शूटिंग अभी क्यों होगी? अभी ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है या भक्ति मार्ग आगे जा रहा है? भक्ति मार्ग की बात है, वो तो भक्ति मार्ग के नेपाल की बात है। अभी ज्ञान मार्ग की परीक्षाएं कहाँ से आ गई? अभी तो ज्ञान मार्ग में पढ़ाई चल रही है या परीक्षाएं चल रही है? पढ़ाई चल रही है। है तुम्हें दिखाई पड़ता है हिलता है, या उसमें कोई कलश के नीचे स्प्रिंग लगा दी होगी तो हिलने लगता है। हाँ जी, ओम शांति।